इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाशय की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नवद्वीप मायापुर धाम की गोत्रुमा द्वीप धाम की सुरभि कुंज की निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। सब लोग आगे पीछे जितने बैठे हैं सब लोग एक बार पुकारो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
आपके पास वो पेपर है प्रेयर्स का, सबके पास पेपर दिया होगा ना। हमारे मैनेजर्स कहाँ पर है, थोड़ा नजर में रहिए मेरे। वो प्रार्थना का बांटा है आपने नहीं दिया क्या? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी आपको जो प्रार्थना का पेपर्स बांटे जाएंगे वो आपको अभी से लेकर यात्रा समाप्त होने तक अपने साथ में उसको लेके आना है हर जगह पर जहां जहां जाएंगे। ये प्रार्थना का पेपर जो है सब लोगों को हर जगह पर हर रोज लेके आना है जब तक आप बंबई जाएंगे तब तक।
मेरे को जान
तो इसमें से सबसे पहले पन्ने पर जो प्रार्थना है यहां से हम अभी पढ़ना आरंभ करेंगे। ये आपको देने का उद्देश्य है कि आप सब लोग मेरे साथ में अपनी आवाज अपना हृदय भक्ति इसमें मिलाएं, इसलिए आपको दिया गया है। सब लोग ये तैयार हैं शुरू करने के लिए? ये जो प्रार्थना हम गाने वाले हैं इसको मंगलाचरण कहते हैं। सब लोग शांति रखिए, कृपा करके कीप साइलेंस। पेपर बांटते समय बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल पेपर ले लीजिए। और ये जो प्रार्थना हम गाने वाले हैं इसका नाम है मंगलाचरण। इस मंगलाचरण के माध्यम से हम इस यात्रा को आरंभ करने पहले सभी आचार्यों से गुरुजनों से आशीर्वाद चाहेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी कृपा लेकर ही फिर यात्रा हमारी आरंभ करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से पढ़िए और अपने आवाज को उसमें मिलाइए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णु पदाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपार्थये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसांबोधे पादांबोजायते नमः। अभी हम जो मंत्र गा रहे हैं वो जिनके घर में हम बैठे हैं ठाकुर भक्ति विनोद जी महाराज जो आपके सामने विराजमान हैं, ये मंत्र अभी इनका है। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वदायते गौर अविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यावृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमान् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रास रसारम्भी वंशीवटा तटस्थितः कर्षण वेणु स्वनैर्गोपीन् गोपीनाथ स्त्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाकदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
गुरुजनों की और आचार्यों की कृपा प्राप्त किए बिना हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। शरीर से फिर भी हम ट्रेन से और बस में बैठकर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आत्मा से प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए भगवान के घर में प्रवेश करने के पहले जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं आचार्यगण गुरुजन, इन सब लोगों की कृपा याचना प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम
केवल शरीर से इस वातावरण में ना आए, आत्मा से, आत्मा के स्तर पर, हृदय से, भक्ति भाव से, स्पिरिचुअली इसमें प्रवेश करें और अपने आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। तो आज के इस 6 नवंबर के 2012 साल के मंगलवार के दिन आप सबका गोद्रुम द्वीप में स्वागत है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सबसे पहले मैं आपको, आप इतनी दूर आए हैं, बहुत सारे लोग कल बस की यात्रा में बहुत व्यस्त रहे, मैं सबका सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ। आपको जो भी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, लेकिन वो हमारे मैनेजमेंट की सीमा के बाहर था, इसलिए हम ज़्यादा कुछ वहाँ पर कर नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप सबके लिए हमारी तरफ से आप क्षमा मांगते हैं। तो सब लोगों ने अपना समय निकाला है, छुट्टियाँ ली है, टिकट निकाला है, बस की यात्रा की है, रूम में एडमिट हुए हैं, इतना प्रयास किया इतने दिन के लिए। तो ये जो जगह है इसका थोड़ा मैं आपको परिचय दूंगा। इसमें से कितने लोग इसमें पहली बार आए हैं, हरी बोल। तो दो जो लोग इसके पहले यहाँ पर आए हैं वो आउट नंबर्ड हैं, और जो लोग नए आए हैं वो मेजॉरिटी हैं। हरे कृष्णा। तो सारी कथाएं मेजॉरिटी को देखकर ही की जाएगी, ये भी ध्यान रखना। तो ये जो सुंदर नवद्वीप धाम, इसका नाम है नवद्वीप, 9 आइलैंड्स, नवद्वीप मायापुर धाम कहते हैं इसको। और ये जगह जो है वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से एक कमल की तरह है, जिस कमल की 100 पंखुड़ियां हैं, यानी कि सुंदर सुंदर भगवान की लीला स्थली यहाँ पर 100 से भी अधिक। भगवान का जो हर धाम होता है वो कमल की तरह होता है। इस 100 पंखुड़ियों में से 9 पंखुड़ियां जो है वो प्रधान है, तो ये 8 पंखुड़ियों का और बीच का जो होता है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल, यानी कि केंद्र स्थान। वो एक केंद्र स्थान 9वां है और उसमें 8 पंखुड़ियां साइड में हैं। तो ये 9 द्वीप हैं, हाँ, इनका नाम मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। और हमारे इसमें यात्रा में बहुत सारे टीचर्स भी हैं, और मैं उनको प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर कुछ याद रखना है तो क्या करना चाहिए। सर, एनीबडी, प्रोफेसर सियन, बार बार दोहराना है, ये एक बात सही है, एक बार सुनना बाद में रिपीट करेंगे तो याद रहेगा। सबसे बढ़िया बात लिखना है, क्योंकि बार बार कहेंगे फिर भी भूल सकते हैं ना, कलयुग में इतनी इतनी हमारी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है, ये पता है, इतना बड़ा सत्य है ये कमजोरी का, स्मरण शक्ति का, कि कलयुग के आरंभ होने के पहले व्यास देव को ध्यान में आया, क्योंकि त्रिकालदर्शी हैं वो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। तो भविष्य में देखा तो कलयुग के सब लोग भुलक्कड़ होंगे। ये उन्होंने देखा बहुत पहले से, तो तब तक कोई शास्त्र जो है वो लिखित नहीं था। ये बहुत विचार करने जैसी बात है, कोई शास्त्र लिखित नहीं था उस समय, शास्त्र केवल श्रुति के रूप में था, यानी कि हम कहेंगे और आप सुनेंगे और आप सुनेंगे और आप बताएंगे, और बीच में क्या होगा, सब कुछ याद रहेगा। ये बीच की स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहना सब कुछ चाहेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा तो कैसे कहेंगे। तो पहले द्वापर युग के अंत तक गुरुजन अपने शिष्यों को केवल बोलते थे पेड़ के नीचे बैठकर, और श्रुतिधर सब लोग हुआ करते थे, जो सुनते थे सब धारण करते थे, इसलिए क्या नाम था, श्रुतिधर। सब कुछ जितना भी कहा गया है केवल हार्ड डिस्क में तुरंत स्टोर हो जाता, और जो भी आगे गुरुजन होगा खुद अपने शिष्यों को वैसे के वैसे बताएगा जैसे सुना है। लेकिन कलयुग के आरंभ में ये नहीं होने वाला था कलयुग में, इसलिए व्यासदेव जी ने सारे शास्त्रों को उतारा, रिटन डाउन, लेखन किया उसका, केवल लेखन ही नहीं किया, उसको अच्छी तरह क्लासिफाई भी किया, वर्गीकरण किया उसका, सारा नॉलेज को पहले एक वेद के रूप में था, 4 वेद में किया, फिर 4 वेद के बाद पुराण लिखे, पुराण के बाद में उपनिषद लिखे, उपनिषद के बाद में इतिहास लिखे, इतिहास के बाद में आरण्यक लिखे, ऐसे हम लोगों को समझने के लिए अच्छा हो जाए इसलिए उसका ठीक तरह से वर्गीकरण करके उसका लेखन किया। और उस लेखन को जब कथा होती है तो हम पढ़ते हैं और कथा करते भी हैं, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, फिर कथा करनी होती है फिर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कलयुग का दिमाग है ना हमारा, इसलिए आपको सबको विनती है, व्यास देव जी ने जो सोच समझकर किया है लिखना, वो आप भी लिखिए, आपको भी याद रहेगा। तो नौ द्वीप कौन से हैं? सबका सबका जो सबसे बीच में जो सेंटर में है उसका नाम है अंतरद्वीप, यानी मायापुर उसका नाम है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना। अभी हमारा बंसी भवन, इस्कॉन का मंदिर, सबसे पहले हम लोग उतरे उड़िया भवन, ये सब जो है वो अंतरद्वीप में आता है। उसके बाद में ये गंगा के पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में ऐसे वन है, ऐसे द्वीप हैं। तो चार जो है वो पूर्व दिशा में है, अंतरद्वीप, दूसरा है सीमांत द्वीप, तीसरा है ये गोद्रुम द्वीप जिसमें हम बैठे हैं, और चौथा है मध्य द्वीप। ये चार द्वीप गंगा जी के पूर्व किनारे में हैं, पश्चिम किनारे में आगे वाले हैं वो है ऋतु द्वीप, जानू द्वीप, मोद द्रुम द्वीप, और लास्ट है रुद्र द्वीप। कितने हो गए? आठ हो गए। एक कहीं एक है कोल द्वीप। थैंक यू वेरी मच। तो नहीं, एक मिनट, मैं दोबारा दोहराता हूं। पश्चिम दिशा में पहला है पांचवा कोल द्वीप, उसको पहले लिखिए। छठवा है ऋतु द्वीप, सातवा है जानू द्वीप, आठवा है मोद द्रुम द्वीप, मोद यानी आनंद, द्रुम यानी वृक्ष, मोद द्रुम, और नौवा है रुद्र द्वीप। इस प्रकार से ये नौ द्वीप हैं, और ये नौ द्वीप जो है वो प्रहलाद महाराज द्वारा दिए गए नवधा भक्ति के एक एक अंग को, एक एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। दे रिप्रेजेंट ईच एस्पेक्ट ऑफ नवधा भक्ति। तो अंतरद्वीप में आत्मनिवेदन का प्रमाण है, सीमांत द्वीप में श्रवणम, ये नवदा भक्ति कैसी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो आत्मनिवेदन अंतरद्वीप, श्रवणम सीमांत द्वीप, ये जो हम बैठे हैं गोद्रुम द्वीप, ये कीर्तनम, ये कीर्तन विधि का द्वीप है। मध्य द्वीप स्मरण के लिए है, कोल द्वीप पाद सेवन के लिए है, ऋतु द्वीप अर्चना के लिए है, जानू द्वीप वंदनम के लिए है, मोद द्रुम द्वीप ये दास्य के लिए है, रुद्र द्वीप साक्ष्य के लिए है। ना हो गए ना बराबर से? तो ये व्यास देव जी और सभी आचार्य चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं, इन सभी लोगों का कहना है कि नवद्वीप धाम, श्री वृंदावन धाम और श्री जगन्नाथपुरी धाम, ये एक दूसरे से अभिन्न है, सेम है, इसमें भेदभाव करना अपराध है। यानी कि श्री वृंदावन धाम में नवद्वीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम भी विराजमान है, श्री जगन्नाथपुरी में भी वृंदावन धाम और मायापुर धाम विराजमान है, और श्री मायापुर नवद्वीप धाम में भी जगन्नाथपुरी और श्री वृंदावन विराजमान है। इस तरह से इसमें से किसी भी धाम में हम दर्शन करेंगे तो हमको तीनों धाम का दर्शन करने का लाभ मिलता है, क्योंकि तीनों अभिन्न है। केवल इसमें समझने वाली बात यही है, तो टेक्निकल बात है जो मैं समझाना चाहूँगा आपको। भगवान का धाम जो है वो दो तत्वों से भरा हुआ है, उसमें अनंत भक्ति के तत्व हैं, लेकिन दो प्रधान तत्व ये है, एक है माधुर्य यानी कि स्वीटनेस, स्वीटनेस ऑफ नेक्टर, और एक है औदार्य यानी कि उदारता, उसको इंग्लिश में कहते हैं म्यूनिफिसेंस। औदार्य और माधुर्य दोनों भगवान के धाम में रहते हैं, लेकिन जब माधुर्य प्रधान होता है, व्हेन माधुर्य टेक्स प्रेडोमिनेंस, तब वो श्री वृंदावन धाम बन जाता है, और जब औदार्य प्रधान होता है तो वो श्री नवद्वीप धाम बन जाता है। अंतर कुछ नहीं है, लेकिन भाव में अंतर है। भगवान जब माधुर्य भाव में रहते हैं तो वो वृंदावन लीला करते हैं, और भगवान जब उदार बन जाते हैं, कृपा बरसाते हैं, दया बरसाते हैं, कंपैशन को बांटते हैं, तो वो श्री नवद्वीप धाम बन जाता है। और एक वृंदावन में और नवद्वीप में अंतर है, श्री वृंदावन मथुरा धाम में जो भी हम अपराध करते हैं उसको हमारे अगेंस्ट, हमारे विरुद्ध हजारों सैकड़ों गुना रखे जाते हैं, दे आर हेल्ड अगेंस्ट अस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, अगर हम लोग वहां पर अपराध करते हैं तो, और उसका दंड भी मिलता है उतने ही प्रमाण में। लेकिन श्री नवद्वीप धाम में अगर हम कोई अपराध करते हैं तो वो माफ किया जाता है, इसलिए उसको उदार औदार्य कहा गया है। इसलिए ऐसे कहा गया, अगर आपको किसी धाम की यात्रा जीवन में सबसे पहली बार शुरू करनी है तो श्री गौरांग महाप्रभु के नवद्वीप धाम से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम नव से किया होंगे, हमारे हाथ से कुछ गलतियां होंगी, कुछ अपराध होंगे, कुछ हम यहाँ वहाँ कुछ सोचते बैठेंगे, कुछ गलती देखेंगे, उस पर नज़र रखेंगे, हमारी तरफ से जाने अनजाने में बहुत सारे अपराध हो सकते हैं जब हम नए नए होते हैं। तो धाम में रहने का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस, वो यहाँ से शुरू करना चाहिए। तो गलती हो भी जाए तो माफ़ी मिलती है, लेकिन एक गलती यहाँ पर माफ़ नहीं की जाती है। किसी को पता है? हाँ, ये बात ऐसी है कि वो औदार्य धाम में भी उसकी माफ़ी नहीं होती है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, हाँ इतना प्रेम करते हैं कि उनके खिलाफ किया हुआ कोई भी अपराध वो सहन नहीं करते। इसलिए हमारी यात्रा में कोई नव नए नए आए होंगे, कोई पुराने होंगे, कोई सब जानते होंगे, कोई नए जानते होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन इस यात्रा में रहते हुए हम लोगों को सबसे नम्रता से संग करना चाहिए। किसी के साथ में कोई वाद विवाद या कोई ऐसे जाने अनजाने में, बोलते ना मराठी में खटका, खटका नहीं उड़ना चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग सब लोग एक ही उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, चाहे कोई पंजाब से आया है, कोई साउथ से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई मारवाड़ से आया है, कोई राजस्थान से आया है, अलग अलग कल्चर से आया है, लेकिन एक उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए। क्या है उद्देश्य हमारा? वो यस, भगवान के चरणों में शरण लेने के लिए आए हैं। जैसे हमने यात्रा के वो पेपर में आपको लिख के बताया था कि धाम में जाने का उद्देश्य है कि हम भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें, भगवान की सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। कितने सारे उद्देश्य हमारे हैं, और चूंकि हमारे अंदर बहुत सारे अलग अलग विविधता होंगी, हमारे अंदर हम लोग बहुत अलग अलग होंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अभी एक कॉमन चीज़ क्या है कि हम सब लोग यात्रा करने आए हैं। दिस इज द कॉमन थिंग, ये कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर हम लोग सब लोग आए हैं। बहुत सारे लोग किसी को पहचानते भी नहीं है, अभी पहचान होगी चार दिन में। हाँ, सब लोग जा जा के पहचान कराना, हाँ ऐसे अलग अलग आइलैंड बना के मत रहना, क्योंकि हाँ ये हम लोग भगवान के धाम में आए हैं एक उद्देश्य को लेकर, इसलिए हम लोग अभी सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हाँ, कोई बड़े अधिकारी होंगे, कोई छोटे अधिकारी होंगे, कोई हाउसवाइफ होंगे, कोई और कुछ होंगे, कोई और कुछ होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान के सामने हम सब लोग कृपा के याचक हैं, सब लोग के हाथ में पात्र है, भिक्षा पात्र सबके पास में है ना, कम से कम हृदय में होना चाहिए। वो कृपा का पात्र लेकर सब लोग आए हैं, ये याद रखना। हम लोग यहाँ पर भगवान से रो रो कर कृपा की भिक्षा मांगने के लिए आए, तभी हमारी यात्रा सफल होगी। इस भाव में होंगे तो हम लोग सभी बाहरी वस्तुओं से परे हो जाएंगे। अभी देखिए, किसी के रूम के बाहर गीजर है, किसी के रूम में के बाहर लकड़ी में पानी बॉयल हो रहा है, हाँ किसी को चलने में दिक्कत है, कोई फिसल सकता है, या किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को रात को नींद नहीं आई है, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आई है, कम हो गई नींद, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। यात्रा में नई जगह है, नया भोग प्रसाद है, किसी को प्रसाद अच्छा लगा होगा, किसी को नहीं अच्छा लगा, किसी को सूट हुआ होगा, किसी को नहीं सूट हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम लोग नई जगह पर हैं। लेकिन हम लोग ये कैसे सहन कर सकते हैं सब कुछ, जब हमारा उद्देश्य उच्च है तो बोले कोई बात नहीं, उसको लेने के लिए हम लोग सब कुछ सहने को तैयार हैं। अभी आप लोगों से कितने बड़े बड़े अधिकारी होंगे, हाँ सब लोग जमीन पर बैठे हैं, कोई किचन में बैठा है, हाँ बॉम्बे में कहेंगे आपको के एम हॉस्पिटल के बाहर बैठ जाओ तो बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते, नॉट कैनॉट सीट डाउन। भक्ति विधान के सामने साफ सुथरा झाड़ू मार के रखा है, बैठ जाओ रास्ते पर, नहीं बैठ सकते, लेकिन धाम में बैठ रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर कृपा लेने के लिए आए हैं। हमारा कपड़ा सफ़ेद दाग पड़ेगा क्या सोचने के लिए नहीं आए, ये सोचने के लिए आए कि आत्मा पर जो दाग गिरा है वो कब जाएगा। कपड़े पे दाग गिरेगा तो चलेगा, लेकिन आत्मा पर जो दाग गिरे हैं वो साफ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। वी हैव कम हियर टू क्लेंस अवर सोल ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ लाइफ टाइम्स टुगेदर। जन्म जन्मांतर से जो हमारी आत्मा काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के जंजाल में गंदगी में फंसी हुई है, उसको स्वच्छ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, महासफाई अभियान में हम लोग यहाँ पर आए हैं। हाँ, वी हैव कम ऑन अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ महासफाई ऑफ द सोल। तो ये धाम का विशेष कृपा है, और हम लोग अभी शुरुआत में ही भगवान के औदार्य धाम में आए हैं। जहां पर भगवान बड़े उदार भाव में खड़े हैं। कैसे उदार भाव में, आपको समझाऊंगा मैं, ये थोड़ा रहस्य आप समझेंगे तो आपके अगले चार दिन का मूड एकदम बढ़िया बनेगा। संक्षेप में कहूंगा, बड़ी लंबी लंबी कथाएं हैं, उसके लिए महीना लगेगा आपको, यहाँ रहेंगे तो सब कथा बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैप्सूल छोटी कर देंगे एक ही झटके में आप पी सकते हैं, वैसे बनाएंगे इसको। तो ऐसा है कि भगवान ने जब कृष्ण के रूप में द्वापर में अवतार लिया, द्वापर के अंत में, तो उन्होंने राष्ट्रध्वज रचाया सभी गोपियों के साथ में। इतना वो अनन्य भाव था, अनन्य क्रिया थी, इसमें ना यशोदा माता जा सके, नंद महाराज नहीं प्रवेश कर सके, ना सखा प्रवेश कर सके, ना मोर, ना गाय, हाँ केवल गोपियाँ एकदम एक्सक्लूसिव, और वो भी बीच रात में। उन्होंने रात भर नृत्य किया, ब्रह्मा जी की एक रात यानी करोड़ों साल एक रात में समेट कर उन्होंने गोपियों को रास लगा आनंद दिया। और शास्त्र के अनुसार ऐसे वर्णन किया है कि भगवान को जो अपने भक्तों को सर्वोच्च आनंद देना है, और कितना सर्वोच्च दे सकते हैं, वो उन्होंने रास के माध्यम से प्रकट किया। और रास में फिर सभी गोपियों के साथ में वो विस्तारित हो गए, हर एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण थे, और सबको लगने लगा कि मेरे साथ में है। इतने वो खुद मग्न थे नृत्य में भगवान के साथ में, तो उनको बाजू में क्या हो रहा है उसका ध्यान नहीं था, बोले भगवान मेरे साथ में, सबको छोड़कर, इतनी करोड़ों गोपियों को छोड़कर मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं। तो पहले बड़ा आनंद लगा उनको, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद का भाव था, बाद में लगा उनको कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, इसलिए सबको छोड़कर मेरे साथ में है, इतनी सारी गोपियाँ फिर भी मैं कुछ विशेष हूँ, इसलिए सबको छोड़कर मेरे साथ में आए। और ये दुर्भाग्य से सभी गोपियों के मन में विचार प्रकट हो गया एक साथ, और भगवान को ऐसा गर्व अहंकार कभी पसंद नहीं आता है। सब कुछ भगवान हमारे अंदर का गंदगी सहन कर सकते हैं, लेकिन अहंकार जो होता है ना, और दम्भ यानी कि झूठ मूठ का जो दिखावा होता है ना, हिपोक्रेसी, वो अहंकार वो सहन नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये भाव आया, वे एकदम अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, और सब गोपियां बोलने लगी, पता है वो केवल मेरे साथ में थे। दूसरी बोली, अरे मेरे साथ भी थे। तीसरी बोली, मेरे साथ भी थे। सभी करोड़ों गोपियां बोली कि मेरे साथ में थे। तब उनको ध्यान में आया कि वो सबके साथ में थे, लेकिन हमारी गलती की वजह से, झूठ मूठ के अहंकार की वजह से, गर्व की वजह से वो हमको छोड़ के चले गए। फिर रोने लगे। पहले वो राधा रानी के साथ चले गए, उसको लेकर सब गोपियां रोने लगी। फिर कुछ देर बाद राधा रानी के साथ में उन्होंने व्यक्तिगत संग किया, तो राधा रानी छल थक गई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं थक गई हूं, मुझे कंधे पर उठा लो। तो तुरंत भगवान अंतर्धान हो गए, और राधा रानी भी दुखी हो गई, अरे मैंने भी उनको खो दिया, मैंने भी अपने आप को बड़ा समझा, इसलिए अकेला संग मिल रहा था, फिर भी मैं भी खो बैठी उसको। फिर राधा रानी उनको मिल गए, सब लोग रोने लगे। तो एक गीत है भागवत में, इसका नाम है वेणु गीत, उन्होंने गाया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि भृण्णती ते भूरि दाजनः। भगवान के विरह में उन्होंने गीत गाया, भगवान अकेले हो गए, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अभी भी वो जगह है, हाँ फरवरी में हम जाने वाले हैं, जिनको जिनको आना है वो आ सकते हैं वृंदावन की यात्रा में। तो वो यमुना किनारे बैठ गए, और भगवान को गोपियों का विरह हुआ। ऐसा नहीं कि भगवान बहुत आनंद में थे उनको छोड़ के, वो भी विरह में थे, रोने लगे। और एक जगह बैठकर आंख बंद करके उन्होंने राधा रानी और गोपियों के प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया, और मग्न हो गए वो उनके भाव पर विचार करते हुए, एकदम भाव विभोर हो गए। और भाव विभोर होने के बाद में उनका जो घना बादल का नीला रंग का शरीर था, वो गौर वर्ण का हो गया, मतलब वो राधामय हो गए। राधा की कांति कौसी है, स्वर्ण कांति है, गौर वर्ण स्वर्ण कांति है उनकी, उन पर वो रंग छा गया, मतलब राधा ही हो गए वो, राधा ही भाव को स्वीकार करते हुए। और इस भाव में जब बैठे गए, तो आप देख रहे हैं पीताम्बर पहने हैं, मुकुट धारण किया, उसमें मोर पंख है, मुरली है कमर पर लगी हुई, और वैदयंती माला है, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स का चिन्ह है, सब कुछ वही है, लेकिन रंग गौर वर्ण का है। तो सब गोपियां गाते गाते रोते रोते वहां पर आए, देखा तो अरे ये कौन व्यक्ति है, दिखता तो कृष्ण जैसा है लेकिन काला नहीं है, गौर वर्ण का है, ये क्या रहस्य है, आपस में बातें करने लगी। फिर राजा रानी ने धीरज करके उनको जाके स्पर्श किया। जैसे स्पर्श किया तो वो बाह्य चेतना में आ गए, मतलब एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस। जब भाव विभोर हो गए थे वो वापस आ गए, तो फिर उनका जो वर्ण था वो धीरे धीरे चला गया और दोबारा घनश्याम का वर्ण जो है वो प्रकट हो गया। तो राधा रानी ने पूछा, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, ये क्या रहस्य है? तो उन्होंने रहस्य को समझाया कि मैंने तुम्हारे प्रेम के ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित किया, उस प्रेम की महिमा को समझने का प्रयास किया, तब मेरी उस प्रेम को अनुभव करते करते ये अवस्था हो गई, और इस अवस्था में मैंने इतने आनंद का अनुभव किया, इतने आनंद का अनुभव किया है कि मैं दोबारा इस अवस्था को प्राप्त करना चाहता हूं। और हे राधे, हे प्रिय, मैं आपको वादा करता हूं कि आप ही का भाव लेकर मैं अगले युग में फिर अवतार लूंगा। आप ही का भाव लेकर, आप ही का प्रेम जो मैंने अनुभव किया है उसको खुद अनुभव करूंगा दोबारा, और उस प्रेम को जो आप मुझसे करती है उस प्रेम को मैं सबको बांटना चाहूंगा। यह रहस्य है कि कृष्ण भगवान कलयुग में राधा का भाव लेकर प्रकट हुए, इसलिए उसको छन्ना अवतार कहते हैं। छन्ना यानी कि छुपा हुआ, कवर्ड, आम आदमी के सामने वो प्रकट नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने राधा का भाव समझने के लिए, भगवान सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ कृष्ण उनका नाम है, सब कुछ ज्ञान जो है उनकी ओर से आता है, ऐसी कुछ चीज नहीं जो वो जानते नहीं है। फिर भी ये वो जानते नहीं है कि राधा रानी के हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है। वो देख रहे हैं कि मैं जब प्रेम करता हूं उन पर, वो मुझ पर प्रेम करती है, तो ये आदान प्रदान में मुझसे अधिक उनको आनंद प्राप्त होता है। जब वो मेरी सेवा करती है तो सेवा लेते हुए जो आनंद प्राप्त होता है उससे भी अधिक आनंद सेवा करने वाली राधा रानी और गोपियों को होता है। यानी कि वो जो आनंद है वो मुझे पता नहीं है और वो मुझसे ज्यादा आनंद है, तो उस आनंद को मैं अनुभव करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो बन के आना होगा, दास बन के आना होगा, मेरा ही भक्त बनकर मेरी भक्ति करेंगे तो मैं अपने इस आनंद को समझ सकता हूं। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बात है ये। हाँ, स्वयं भगवान जिनका सब पूजन करते हैं वो उस आनंद को अनुभव करना चाहते हैं जो उनके भक्त उनका पूजन करके प्राप्त करते हैं, इसलिए वो भगवान बनकर नहीं आते हैं। एक तो राधा भाव को स्वीकार कर लिया और दूसरा अपना भगवान के पोजीशन को भी छोड़ दिया। अभी मैं जैसे पुराने जमाने में राजा लोग भेष बदल कर अकेले राज्य में घुमा करते थे, कोई फटीचर बन के ऐसे घूमते थे और सब देखते थे क्या चल रहा है। उस समय ना सेना है, ना सेवक है, ना घोड़ा है, ना गाड़ी है। तो वैसे अगर कुछ उच्च चीज प्राप्त करनी है तो क्या करना होगा? अपना जो पद है, जो अहंकार है, उसको छोड़ के आना पड़ेगा। संत लोग हमेशा कहते हैं अगर धाम में जाना है तो रजोगुण को छोड़ के आना होता है। हम कौन है? हम डॉक्टर है या हमारा मैनेजर है या कोई करोड़पति है या कोई पढ़े लिखे हैं या कोई धनवान है या कोई सुंदर है, अच्छे कुल से है या अमेरिकन है, इंग्लैंड है, ये सारी जो हमारी टोपियां हैं वो टोपियों को उतार के आना पड़ता है। हाँ, सारी टोपियों को उतार के आना पड़ता है, एक ही टोपी पहननी है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, मैं केवल कृष्ण का दास बनकर यहाँ पर आ रहा हूँ, और मेरी कोई उपाधि नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई पद नहीं है। क्योंकि भगवान के सामने क्या दिखाएंगे? जैसे कोई बड़े पहलवान के सामने एक चींटी आके बोलेगी पंजा लड़ाओगी, तो पहलवान क्या बोलेगा? बोले क्या बोलना है इसको, इतनी सी चींटी है फिर मुझे आर्म्स दिखा रही है, पंजा लड़ाने का चैलेंज कर रही है। वैसे भगवान के सामने खड़े रहकर बोलेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तो भगवान हंसेंगे ना, क्योंकि सारी शक्ति तो मैंने ही दी है। तो ये जो चीज है इसको छोड़कर जब स्वयं भगवान आ रहे हैं, जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति है विश्व का, निर्माण का, विश्व भी नहीं क्रिएशन का, सब कुछ उन्होंने निर्माण किया है, वो व्यक्ति अपना सर्वोच्च पद छोड़कर एक दास बनकर यहां पर आए हैं भक्त बनते हुए, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात क्या है कि जो आनंद, सर्वोच्च आनंद, जो गौलोक धाम का सर्वोच्च आनंद जो गोपियों को प्रदान करते हैं एक्सक्लूसिवली, वो आनंद वो आम जनता को बांटने के लिए यहां पर आए। मतलब क्या? स्थाने अस्थाने ना देखिला, ना देखिला स्थाने ना देखिला, ने पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान, कि कोई व्यक्ति पात्र है कि अपात्र है, योग्य है कि अयोग्य है, उसकी तैयारी है कि नहीं है, या जगह अच्छी है बताने के लिए, देने के लिए, कुछ भी ना देखते हुए उन्होंने सभी जनता को ये जो अद्भुत अलौकिक कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, भक्ति का प्रेम था, इस सब को बांटने के लिए वो आए। उन्होंने कहीं भी कोई भेदभाव नहीं किया। दीना हीना याता चिलो हरिनामा उद्धारी लो तारा साक्षी जगाई मदाई। जगाई मदाई जो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे, उसके बाद रावण कुंभकर्ण के रूप में आए, उसके बाद दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में आए, भगवान के शत्रु बनकर बहुत पापी बनकर आए, वो कलयुग में चौथी बार आए, जगदानंद और माधवानंद उनके बाद में का नाम था, पहले उनका नाम था जगाई मदाई। जितने पाप एक दिन में वो करते थे उसमें विश्व के सारे लोग मिलकर जिंदगी भर जितना नहीं कर सकते हैं वो सब एक दिन में करते थे, वो इतने भयंकर पापी थे वो। उसके पापों के रिकॉर्ड से यमराज का पूरा डिपार्टमेंट एग्जॉस्ट हो गया था। यमलोक में उनका सारा ऑफिस इतना रिकॉर्ड भर भर के खत्म हो गया, फिर जमीन पे गड्ढे बनाकर उनका रिकॉर्ड उन्होंने डालना चालू किया, और इतना ही काम नहीं था कि गड्ढे बना के डाल दिया, अरे उसको दंड भी देना है उसके बाद में, इतना रिकॉर्ड कहाँ कहाँ किस किस गड्ढे में रखा है, कौन सा पेपर निकाल के कब कब उसका दंड देना है, ये भी बड़ी समस्या थी उनके सामने, इतना बड़ा उनका पापों का रिकॉर्ड था। ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने, जब वो कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर भक्त रूप में कृष्ण प्रेम को बांटने को आए थे, तब उन्होंने एक ही बार केवल उनसे एक वादा लिया, आज के बाद पाप नहीं करेंगे, बस उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया उसको। उस एक वादे पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया, और गले लगाते ही सारे उनके पाप कर्म थे जन्म जन्मांतर के वो स्वीकार कर लिए, और गौर वर्ण के स्वर्ण कांति वाले चैतन्य महाप्रभु एकदम काले हो गए। और फिर उन्होंने सबको कहा कि हरि नाम संकीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब ये कीर्तन हुआ तो धीरे धीरे महाप्रभु जी का काला रंग जो है वो उतरता गया, और दोबारा उनकी कांति स्वर्णमय उज्ज्वल कांति हो गई। उन्होंने कहा, ये भी बात ध्यान से सुनना, कि ये जो उनके पाप मैंने स्वीकार किए और ये जो हरिनाम संकीर्तन करने के बाद में इनके पाप सब नष्ट होकर आसमान में चले गए, अवकाश में चले गए, जो भी व्यक्ति आगे जाकर भविष्य में वैष्णव अपराध करेगा ये पाप उनमें प्रवेश करेंगे। भगवान बहुत होशियार है, वो जानते हैं कैसे मैनेजमेंट करना होता है। मैंने ये बताया, सावधान सब लोग, मेरे भक्तों का जो कोई अपराध करेगा, चाहे मायापुर में हो, वृंदावन में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, मद्रास में हो, मेरे भक्त का अपराध करेगा तो ये जो भयंकर पाप मैंने कीर्तन के प्रभाव से अवकाश में भेज दिए हैं वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। इसलिए सब लोग बचना वैष्णव अपराध से, वैष्णवों का दिल नहीं दुखाना कभी, उनको कभी भी दुख नहीं देना। तो क्या कह रहा था मैं, दीना हीन याता चिलो हरिनाम उद्धारी लो। उन्होंने जगाए मदा जैसे सबसे जघन्य पापी व्यक्तियों को भी न केवल पाप मुक्त कराया लेकिन श्री कृष्ण प्रेम में डुबो दिया उन्होंने। एक हो सकती है मुक्ति, पापों से मुक्ति, मोक्ष, लेकिन उसकी ये मोक्ष यानी जीरो, न्यूट्रल सिचुएशन, नेगेटिव से जीरो पे आ गए, लेकिन जीरो कोई अंत नहीं है, आगे बढ़ना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसी है, एक ही साथ में जघन्य पापों का नाश, एक ही क्षण में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जो कल तक जघन्य पापी थे वो एक ही क्षण में महाप्रभु चैतन्य द्वारा आलंगित होने के पश्चात एकदम भाव विभोर होकर आंखों से अश्रु बहाकर रोने लगे, कीर्तन में जमीन में लोटपोट होने लगे, अति आनंद के अष्ट विकार प्रकट किए उनके शरीर में। यमराज को विश्वास नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने बड़े पापों का रिकॉर्ड मैंने उनका रखा हुआ है, पता नहीं कब करूंगा उनका दंड देने का काम। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, वो तो मुक्त हो गए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ, बोले हमको देखना जाके। तो अपने गधे पर, वो होता ना गधा नहीं, क्या बोलते उसको, भैंसा पर बैठकर तुलन पृथ्वी पर चलो, अभी देखना है मुझे ये बात सच है कि नहीं है। तो भैंसा इतना जोर से भगाने पर उसके मुंह में झाग आया और बेहोश होकर गिर गया। तो यमराज को टेंशन आया, मैं कैसे जाऊंगा पृथ्वी पर, वहां से ब्रह्मा जी आ रहे थे अपने हंस पर बैठकर, वो कहा आ जाओ मेरे पास, लिफ्ट ले लो। तो लिफ्ट दिया उनको उन्होंने राजहंस के ऊपर, और राजहंस के ऊपर बैठते हुए ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे हुआ ये, इतनी कृपा कैसे हो सकती है, ये उन्होंने पूरा वर्णन किया। वो वर्णन सुनकर यमराज को विश्वास नहीं हुआ, वो बेहोश हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नया कायदा दिख रहा हूं, हमारे पूरे दंड विधान में कहीं दिखा नहीं है ऐसे कभी, कैसे भी कि भगवान ने कभी माफी किया है। तो बेहोश अवस्था में पृथ्वी पर पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल डालकर उनको जगाया, यमराज जी उठो अभी आ गया है तुम्हारा गंतव्य स्थान, देख लो अपने आंखों से, विश्वास कर लो। तो यमराज जी जगे और देखा तो जब जगाई मधाई दोनों हाथ उठाकर नाच रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा पश्चाताप करते हुए वादा करके, भगवान को वादा किया उन्होंने कि इसके आगे कोई पाप नहीं करेंगे। दोनों संत बने आगे, माधवानंद गोस्वामी और जगदानंद गोस्वामी। पहले जगाई नाम मधाई नाम के बड़े नामचिन गुंड थे, वो यहाँ के वो संत बन गए। अभी भी माधवानंद गोस्वामी की समाधि है, क्या हम सोच सकते हैं उसके बारे में कि अगर मधाई जैसे जगाई जैसे पापी लोग भी अगर भक्त बन सकते हैं तो हमारे लिए भी कुछ चांस है, हम भी कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं। इतना जरूर है कि उतना पाप हम नहीं कर सकते जितना जगाई मधाई ने किया था, लेकिन पापी हम जरूर हैं, इतना हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसा ये औदार्य धाम है, औदार्य मतलब भगवान इतने उदार है यहाँ पर, खाली वो एक ही चाहते हैं कंडीशन, वो कहते हैं कि दोबारा पाप नहीं करूँगा। इतना मन में तैयारी होगी तो पुराना सारा रिकॉर्ड डिलीट करने को वो तैयार है। ये केवल नवद्वीप मायापुर में हो सकता है, हाँ वृंदावन में जाके ऐसी एप्लीकेशन मत देना, वृंदावन में अलग रूल है, वहाँ पर भगवान अलग भाव में है। माधुर्य में वहाँ पर गोपियों को केवल मिलता है प्रवेश, बाकी सब लोग बाहर देखते रहते हैं। यमराज जी शंकर भगवान लक्ष्मी जी सब लोग आते हैं प्रवेश करने के लिए रास्ते में, उनको सबको बाहर कर देते हैं, बोलो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं है। शिव जी महाराज को भी एंट्री नहीं है, लक्ष्मी कह रहे मैं तो वैकुंठ वाली लक्ष्मी हूँ, बोले पहले गाय का गोबर निकालना होगा फिर आपको एंट्री मिलेगी, नहीं मिली एंट्री उनको। कहने का तात्पर्य क्या है कि रास लीला में जो आनंद भगवान ने भक्तों को दिया गोपियों को दिया, वही आनंद उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में सभी जनता को बांटा। जो कोई सबसे मूल्यवान सबसे कॉन्फिडेंशियल सबसे प्राइवेट धन है वो अपने तिजोरी से निकालकर कोई व्यक्ति होगा, लो सब लोग आज मेरा बर्थडे है सब लोग ले लो, तो आश्चर्य होगा ना आपको, अरे हीरे माणिक मोती सब लुटा रहे हैं, क्या बात है आज। बोले राजा के मन में बड़ी कृपा है, आज बड़े भाव से सब लोग को दे रहे। ऐसे जब कृष्ण भगवान गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं तो उस भाव में अपने धाम का जो सार रूपी आनंद है तो सबके लिए प्राइवेट और सबके लिए नामुमकिन प्राप्त करने जैसा है, वो सब जनता में आकर बांट रहे हैं। ये इस धाम का सही रहस्य है। और वो जो लूटता हुआ धन है उसको पकड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, हो सकता है कभी प्रसाद तीखा होगा कभी मीठा होगा, लेकिन उसको पकड़ना है, ध्यान रखना, तो ही हमारे आने की यहाँ के जो कोशिश है वो सफल रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मायापुर में आता है और यहाँ पर चलता है अपने पैरों को लेकर, वो माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माता के गर्भ में आकर दोबारा जन्म लेना, दोबारा बूढ़ा होना, बीमार पड़ना और मर जाना, ये जो दुष्ट चक्र है इस चक्र से वो मुक्ति पाता है। और यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है, वो गौलोक धाम की जो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम है उसको भी प्राप्त करता है। अगर वो सही भाव में दास्य भाव में नम्र भाव में अगर यहाँ पर आता है और कृपा याचना करता है, गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं बस से प्लेन से ट्रेन से बोट से, तब से हृदय के अंदर के कोने में गौरांग महाप्रभु की कृपा की याचना करते रहनी चाहिए। वी हैव टू कीप बेगिंग इन द हार्ट इन द कॉर्नर ऑफ द हार्ट इनर चेंबर ऑफ द हार्ट फॉर द मर्सी ऑफ गौरांग महाप्रभु, तब जाकर ये कृपा प्राप्त होती है। अगर हम ऐसे लिखा है शास्त्र में कि अगर हम नवद्वीप धाम में आकर देखते हैं अरे ये कितनी गंदगी है कितना कीचड़ है ऐसा है वैसा है ये नहीं वो नहीं, अगर भौतिक दृष्टिकोण से इसको हम देखने लगेंगे तो आपको 1111 दोष दिखेंगे इसके अंदर, शायद कम नंबर बताया मैंने आपको, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, क्योंकि भौतिक दुनिया दोषों से भरी है। कलेर दोषेर निधे राजन, हाँ दोषों का सागर है ये पूरा, ढूंढने लगोगे तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना बंद करोगे और भगवत भावना की कोशिश करोगे ढूंढने की तो भी मिलेगा। तो क्या कहा है, अगर हम भौतिक दृष्टिकोण से इसको देखते रहेंगे तो ये धाम की महिमा कवर हो जाएगी, हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी और हमको कुछ नहीं मिलेगा, पर्दा बंद किया जाएगा, सब दर्शन बंद हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी चेतना को हम सही कांटे पर रखे, फाइन ट्यून करते हुए, हाँ, ताकि जो यहाँ पर चेतना मिलने वाली है वो पूरी तरह से मिलती रहे। यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग। होता ना जरा कांटा हिलता है ना रेडियो में, टर टा ट्रो 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 होता है कि नहीं, जो सुनाई पढ़ना चाहिए वो सुनता नहीं, बाकी सब आवाज़ आती रहती है। तो हमारा फाइन ट्यूनिंग जब आत्मा की होगी तो पूरी कृपा यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ का एक बेनिफिट ऐसा है कि ज़्यादा मेहनत किए बिना आपको यहाँ की कृपा मिल सकती है। वृंदावन धाम में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करते हुए अगर हमारे चेतना सही जगह पर होगी तो यहाँ की कृपा मिल सकती है। अभी देखिए 4 नंबर पेज। तो इस धाम की महिमा ऐसी है, इस धाम में आने वाला व्यक्ति 3 प्रकार का होता है। एक व्यक्ति जन्म उसका यही होता है, उसको धामवासी कहते हैं। एक व्यक्ति वो है जन्म बाहर हो गया है, यहाँ पर सेटल हो गया है, अपना घर वर लेके रिटायरमेंट में पैसा लेकर यहाँ पर घर बना लिया है और उसके आगे यही रहने वाला है, वो सेकेंड टाइम का धामवासी होता है। और तीसरे टाइप का धामवासी कैसा है, हमारे जैसा, कुछ दिन के लिए आते हैं। लेकिन आप भी इतने दिनों के लिए धामवासी हो, 1 घंटे के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, 6 दिन के लिए हो, आप भी धामवासी हो। तो जो व्यक्ति धामवास करता है वो बहुत भाग्यवान है। ऐसे ठाकुर भक्ति विनोद जी जो यहाँ विराजमान हैं उनके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, वो कह रहे हैं, ये किताब जो इन्होंने लिखी है नवद्वीप महात्म्य, जो अन्य सभी तीर्थ क्षेत्रों में अनंत बार भेंट देकर भी आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो आध्यात्मिक धन केवल नवद्वीप का स्मरण करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर चलने वाला आपका जो एक एक कदम है जिस पर आप अपने पैरों से चल रहे हैं, एक एक कदम के साथ में सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ आपको मिल रहा है। यहां पर सोने से योग निद्रा का लाभ होता है, तो सोना भी अच्छा है। यहाँ का जल जो है वो सब सार रूप है, यहाँ की हवा पवित्र आत्म शुद्धिकारी है। इस धाम में कुछ क्षणों के लिए भी कोई व्यक्ति आता है सही भाव में तो उसके जन्म जन्मांतर के संचित नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान की कृपा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति नवद्वीप में धाम में रहकर भगवान के दिव्य नाम का जप करता है वो तुरंत माया से मुक्त हो जाता है। जो 10-10 साल तक अन्य तीर्थों में निवास करने से प्राप्त नहीं होता है वो केवल 3 रात नवद्वीप धाम में रहने से प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। जो ब्रह्म ज्ञान अनंत पवित्र स्थानों पर रहकर अनेक साल तक योगियों को प्राप्त होता है वो केवल यहाँ पर गंगा जी का दर्शन करने से प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि गंगा जी को प्रेम से निहारना चाहिए। यहाँ पर गंगा जी का स्नान करने से, जल का स्पर्श करने से, गंगा जी का स्मरण करने से, गंगा जी का नाम उच्चारण करने से, वहाँ पर आचमन करने से, उसको निहारने से और स्नान करने से, इसमें से कोई भी क्रिया आप करेंगे तो दोबारा इस पृथ्वी पर आप जन्म ले लेंगे, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। ऐसे अलग अलग पुराणों में लिखा गया है। अन्य प्रकार के जो मुक्तियां हैं, सालोक्य, सारूप्य, सारष्टि, सामिप्य, निर्वाण, ये सब मुक्तियां जो है वो तुच्छ बन जाती है जब व्यक्ति मायापुर में, नवद्वीप में कुछ समय के लिए क्यों ना हो निवास करता है। और ऐसे नवद्वीप में निवास करने के बाद जो प्राप्त होता है भगवान की भक्ति, वो प्राप्त करने के बाद भक्तों को मुक्ति भी तुच्छ लगने लगती है, मुक्ति भुक्ति सब तुच्छ हो जाती है और भगवान के प्रेम में यहाँ पर व्यक्ति मशगूल हो जाता है। सारांश में वो कहते हैं कि नवद्वीप धाम सर्वश्रेष्ठ धाम है। यहाँ पर आश्रय लेने वाले व्यक्ति कलयुग के भौतिक सागर को पार करते हुए भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान का नाम उपलब्ध है और यहाँ पर केवल भगवान के महामंत्र के नाम का जो महामंत्र है उसका कीर्तन करने के लिए भगवान यहाँ पर आए थे। तो ऐसे दोबारा एक बार ऐसे पवित्र धाम पर आने के लिए आपको बधाई हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। फिर लिखा गया है कि ये धाम ऐसा है कि इसमें सारे अन्य धाम आकर आश्रय ग्रहण करते हैं, जैसे कि श्वेतद्वीप, वैकुंठ, गोलोक, श्री वृंदावन, 7 प्रकार के तीर्थ जो क्या है, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतीपुर और द्वारका। ये 7 तीर्थ अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती और द्वारका, ये 7 प्रमुख तीर्थ स्थान माने गए हैं हजारों में से, वो यहाँ पर निवास करते हैं। और जो वैकुंठ है, श्वेता द्वीप, वैकुंठ, गोलोक और वृंदावन, वो भी यहां पर निवास करते हैं। ऐसी कोई पवित्र स्थान नहीं है तो यहां पर निवास नहीं करता है, क्योंकि जो पवित्र स्थान भी है वो भी व्यक्ति है, वो धाम के रूप में भगवान की सेवा करते रहते हैं, उनके पास जाकर लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं की मुक्ति करने के लिए यहां पर निवास ग्रहण करते हैं और अपना उद्धार कर लेते हैं। तो मायापुर नवद्वीप धाम जो है उसकी परिक्रमा 168 मील की है, उसमें जो नवद्वीप है उसकी परिक्रमा 10 मील की है, अंतरद्वीप जो है मायापुर उसकी परिक्रमा 10 मील की है, और जो नवद्वीप है वो 32 मील की उसकी परिक्रमा है। ये उसका टेक्निकल नॉलेज है। यहाँ पर 16 नदियों का निवास है, सब गंगा जी की शाखाएं हैं, वो नदियां इस प्रकार से हैं, यमुना, भोगवती, अलकनंदा, कावेरी, सरस्वती, ताम्रपर्णी, ब्रह्मपुत्रा, सरयू, गंगा, मानसी गंगा, कृतमाला, विद्याधरी, नर्मदा, गोमती, मंदाकिनी और गोदावरी, और भी एक है जलांगी। अभी हम लोग जब आए ना वहाँ से, तो पहले एक ब्राउन रंग का पानी का नदी था, फिर जब टर्न किया हमने तो नीले रंग का पानी हुआ। कितने लोगों ने देखा? हाँ, जब वापस जाएंगे ना दोबारा देखना, एक जगह ऐसा मिलन आएगा उसका, उसमें आपको दो रंग अलग देखेंगे। तो जब हमने टर्न किया और अलग रंग के पानी में प्रवेश किया, वो नदी है जलांगी। वो नदी यहाँ से लेकर मायापुर तक जाती है। अभी बीच में तो जल का पानी, नदी का पानी कम हो गया है, भूमि पैदा हो गई है और खेती भी करते हैं, पेड़ भी आ गए हैं, सब कुछ। लेकिन उस जमाने में जब महाप्रभु चैतन्य यहाँ पर थे, तब यहाँ से लेकर सीधे प्रभुपाद के समाधि तक वो एक ही नदी हुआ करती थी, ये गोद्रुमा और वो अंतरद्वीप। तो इस तरह से ये जो 16 नदियाँ हैं, इनके अलग 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 जो रास्ता है, इस रास्ते के कारण ये जो विभाग है नवद्वीप, ये 9 बेटों में, 9 द्वीप में उसका विभांतर हो गया है। भगवान की अपनी दिव्य इच्छा से गंगा जी का बीच में रखते हुए, उनकी शाखाओं को एकत्र करते हुए उन्होंने 9 द्वीप निर्माण किए। और जब उन्होंने यहाँ पर अवतार लिया तो 48 साल तक उन्होंने लीला किया। उस 48 साल के अपने लीला काल में 24 साल उन्होंने यहाँ पर बिताए हैं, अगले 6 साल भ्रमण में बिताए हैं, और बचे हुए 18 साल जगन्नाथपुरी में बिताए हैं। कुल हो गए 48। तो नवद्वीप धाम में भगवान की बाल लीला, कुमार लीला और पगोंड लीला, विवाह तक उनकी लीला यहाँ तक है, और उन्होंने संन्यास लेकर फिर यहाँ से वो जगन्नाथपुरी चले गए। तो 24 साल तक महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ पर लीला किया। इस तरह से बार बार हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आप ऐसे स्थान में पहुँच पाए। कई लोगों को किसी का फ्रैक्चर हो गया, किसी को बुखार आया, किसी के घर में कुछ तकलीफ है तो नहीं आ सके हैं, कुछ लोग इतने इसके बावजूद भी आ चुके हैं, तो इसलिए फिर आपको दोबारा आपको धन्यवाद है और बधाई है। नवद्वीप धाम इतना दिव्य धाम है कि यहाँ पर चारों युगों में भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का रूप में अवतार होने के पहले की बात है ये। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो केवल कलयुग में अवतरित हुए हैं, लेकिन ये धाम चिरंतन है। भगवान के आने का समय होने के पहले से भी यहाँ पर धाम उपस्थित है, नवद्वीप धाम। तो सत्ययुग में इस धाम में नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। आज के इस यात्रा में गोद्रुम द्वीप के एक स्थान में हम जाएंगे, उसका नाम है नरसिंहपल्ली। इस नरसिंहपल्ली में सत्ययुग में हिरण्यकशिपु को मारने के पश्चात मंदाकिनी नदी में नरसिंह भगवान ने आकर हाथ धोए हैं और यहाँ पर विश्राम किया है। वो स्थान नरसिंहपल्ली, सत्ययुग की कथा है। त्रेता युग में जब रामचंद्र भगवान वनवास में थे तो कई के जगह उन्होंने निवास किया, भ्रमण किया। तो यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है मोद द्रुम धाम। 9 द्वीपों से एक द्वीप है मोद द्रुम धाम। उधर प्रभु रामचंद्र ने सीता लक्ष्मण के साथ में वनवास किया है और सीता देवी को उन्होंने उपदेश किया है और उन्होंने दर्शन दिया है उनको गौरांग महाप्रभु के रूप में, कि इस रूप में मैं कलयुग में आने वाला हूँ और यहाँ पर लीला करने वाला हूँ, ये मेरा चिरंतन दिव्य धाम है। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान भी यहाँ पर आए हुए हैं। एक राजा था समुद्रसेन नाम का, उसके साथ में भीमसेन का युद्ध हुआ था, तो भीमसेन परास्त होने आए थे। तो भीमसेन ने भगवान को पुकारा तो भगवान अदृश्य रूप में आए, तो समुद्रसेन ने भगवान के चरणों में शरण ग्रहण कर ली। तो ये द्वापर की लीला है। और कलयुग में स्वयं पूर्ण अवतार उदार या अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर यहाँ पर लीला की है, और सत्ययुग में अपने भक्त वासुदेव को दर्शन देने के लिए भगवान वराह रूप में भी यहाँ पर अवतरित हुए हैं। कोलद्वीप नाम की जगह है जहाँ पर हम परसों जाएंगे। कल हम जाएंगे मायापुर का दर्शन करने के लिए अंतर्द्वीप का और सीमांत द्वीप का। आज गोद्रुम में है, परसों हम कोलद्वीप में जाएंगे। वहाँ पर भगवान ने सत्य रूप में वराह रूप में अपने भक्त वासुदेव को दर्शन दिया था। तो इस तरह से यहाँ तक इस धाम का महात्म्य का हमने विराम कर दिया है। फिर दो मिनट के लिए हम लोग कीर्तन करेंगे, क्योंकि एक साथ में सारा अगर भर दिया मैंने तो कुछ बर्तन से बाहर भी गिर सकता है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको जगह टाइम दे रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाइए दो मिनट के लिए।